नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण और उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता देने के साथ ही कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के गुवाहाटी में एक जनसभा में देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत देश के साथ दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आज सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के अंतर्गत पहली पूरक मतदाता सूची अगले सप्ताह प्रकाशित होने की संभावना है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक सूची में 60 लाख से अधिक नामों की समीक्षा की गई थी, हालांकि लगभग 15 लाख नामों का निपटारा हो चुका है। इस बीच लगभग 35 लाख मतदाताओं के दस्तावेज का सत्यापन तेजी से जारी है और अधिकारियों का कहना है कि उनके मामलों का निपटारा भी शीघ्र ही कर लिया जाएगा। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के बीच ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से बातचीत की। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों को जल्द ही हरमोज जलडब्लू मध्य से गुजरने की अनुमति मिलने का संकेत दिया है। श्री फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि भारत की ईरान से दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ओमान के सोहार में हुए हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार को और मजबूत करने, भारत में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने तथा व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलने पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री योव हानकू के साथ बैठक में भारत कोरिया आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि दोनों पक्षों ने निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग का विस्तार करने और अधिक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक दिवसीय संवादात्मक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम की धारा 12(1)(c) के कार्यान्वयन, शैक्षिक संकेतकों, कानून और प्रशासनिक मामलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख संस्थानों और रिक्तियों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET स्नातकोत्तर 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अग्रिम परीक्षा शहर सूचना सूची जारी कर दी है। NTA ने स्पष्ट किया कि ये केवल परीक्षा शहर सूचना सूची है बल्कि प्रवेश पत्र नहीं। प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 12,50,000 शिक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेकर साक्षर प्रमाणित होंगे। महिला हॉकी में भारत ने हैदराबाद में इटली को 1-0 से हराकर FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की मनीषा चौहान ने 40वें मिनट में एकमात्र विजयी गोल किया। सलीमा टेटे की अगुवाई में भारतीय टीम का सामना फाइनल मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।